appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
Oh my God.
That looks like a second plane.
Just I did not see a plane go in. That just exploded.
We just saw another plane coming in from the side.
You did. That was out of absolute.
Yes, and that's
view.
The second explosion. You could see the plane come in just from the right-hand side of the screen. So this looks like it is Lord. Some sort of a concerted,
perhaps purposefully, into. Oh my goodness.
Oh God.
11 सितंबर की 15वीं वर्षगांठ पर अमेरिका में हुए हमले में मारे गए ऑस्ट्रेलिया वासियों के परिवार और दोस्तों ने पहली बार बात की है और वह सभी ऑस्ट्रेलिया वासियों से अपील कर रहे हैं कि इस हमले की आड़ में मुसलमानों से असहिष्णुता ना दर्शाएं। इस हमले में मारे गए लोगों में शामिल था ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक प्रसारक SBS से लंबे समय तक जुड़ा एक नाम जिसके रेडियो कार्यक्रमों ने प्रवासी समुदाय पर गहरी छाप छोड़ी।
El programa del recuerdo, folclore, tangos y rosas.
Alberto Pocho Dominguez ने लगभग 13 वर्षों तक SBS के स्पैनिश कार्यक्रम के लिए प्रसारण किया। उनके कार्यक्रम फोकलोर, टैंगो एंड रोजेस ने यहाँ आकर बस रहे कई नए प्रवासियों के दिल को जैसे छू सा लिया। इनमें से एक थे पत्रकार और संपादक डार्विन रॉड्रिगेज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने स्पेनिश भाषी अखबार एल एस्पेनागोल से जुड़े हैं।
I'm pretty sure 99.9% of the Latin American people, particularly people of, from Uruguay and Argentina, were listening. Listening to the program of Pocho was like to be at home for an hour.
अल्बर्टो पोचो डोमिनिगेज का जन्म उरुग्वे में हुआ और वह वहां राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिंग खिलाड़ी भी थे। 1974 में अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ वह सिडनी आ गए, परंतु पोचो का जीवन उनकी मृत्यु की परिस्थितियों के लिए ही याद किया जाएगा। वह 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जा टकराई अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में मरने वाले यात्रियों में से एक थे। रॉड्रिगेज ने SBS को बताया कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके मित्र उस उड़ान में यात्री थे।
Well, it was devastating. I feel for a few hours, and I called a lot of people just to confirm what I was listening. But I felt very sad. Something like I wasn't quite sure at the start if I was dreaming.
इसी दुर्घटना में मारे गए एक और ऑस्ट्रेलिया वासी थे 29 वर्षीय एंड्रयू नॉक्स। एडिलेड के रहने वाले एंड्रयू उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर के 103वें माले पर एनवायरमेंटल आर्किटेक्ट के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद पहली बार बात करते हुए उनकी बेहद करीबी दोस्त क्रिस्टिन एंड्रयूज ने बताया कि एंड्रयू के सामने एक सुनहरा भविष्य था।
He was pretty engaged in politics and the union movement as well. To be honest, I always assumed he'd run for parliament, and he had enough support within the Labour Party to have done that, if that had been his ambition one day.
इन दोनों की मुलाकात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित छात्रों के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रम के दौरान लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी। किर्स्टिन मानती हैं कि जिस घटना से एंड्रयू की मृत्यु हुई, वे समझती हैं कि एंड्रयू कभी नहीं चाहेंगे कि उसके बाद दुनिया में नफरत और युद्ध फैले।
I like to think that he would have been proud of the way some of us have responded, which is to try to make the world a better place where these things don't occur. I think that he would have been distressed to see the war that resulted and the way that the lack of inclusion and interfaith dialogue that has been part of the world politics since that time.
ठीक ऐसा ही कुछ मानते हैं साइमन कैनेडी, जिनकी माँ यूएन की मृत्यु उस उड़ान में हुई जो पेंटागन से जा टकराई थी। परंतु इस घटना के बारे में साइमन ने 2011 तक चुप्पी साधे रखी, जब तक ओसामा बिन लादेन को नहीं मार गिराया गया।
I felt a sort of responsibility all of a sudden, because I saw so much anti-Islam sentiment floating around. I saw so much of that going on, and I wasn't okay with it, because that's not. Because that's not the way I feel, and it's not the way I live, and I didn't want other people taking control of that conversation on my behalf.
साइमन के अनुसार वह नहीं चाहते कि घृणा की भाषा चलन बन जाए, वह भी तब जब नए तथाकथित इस्लामिक आतंकी संगठनों का खतरा बढ़ता जा रहा है।
Then we had ISIS. I mean, who could have picked that there'd be something almost worse than Al Qaeda? But it feels like that's what we're looking at right now. So that unfortunately puts a lot of fear into people, and fear can make people act against their better knowledge.
11 सितंबर 2001 को पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड भी वॉशिंगटन में ही थे। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के मित्र देशों के रूप में अफगानिस्तान और इराक में सहायता कर रहा था। जॉन हॉवर्ड इस बात पे बल देते हैं कि लोगों को नरम इस्लाम और चरम आतंकवाद के बीच अंतर करना चाहिए।
Well, I don't want anybody vilified on the basis of their religion. That's wrong. But equally, it's pointless ignoring the fact that extreme terrorists use their perverted version of Islam to justify what they do, and that is a reality. And I think it's unrealistic to ignore that. I don't think the result of September 11 was a vilification of Muslims. I think the result of September 11 was a legitimate response to an unprovoked, unjustified attack.
SBS के साथ एक खास मुलाकात में जॉन हॉवर्ड ने बताया कि किस तरह विश्व में आतंकवाद का विकास हुआ है और कैसे उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में लोन वुल्फ आतंकी हमले आम बात हो सकते हैं।
I worry that it might be that these lone wolf attacks will continue. There's some evidence to suggest that reverses on the battlefield for Islamic State and the terrorist groups result in an increase in the number of lone wolf attacks. I hope I'm wrong, but the news evidence to date is not encouraging.
जाने